नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राज्यसभा में आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बाद देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन के दौरे पर मणिपुर में इम्फाल पहुंची, वे वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कई उड़ानें रद्द होने और देरी के मद्देनजर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर्स अल्वर्स को तलब किया। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम चंडीगढ़ में। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्र गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज फिर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस पर चर्चा आरंभ की थी। चर्चा का समापन करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र है और ये देश की संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र गीत वंदे मातरम सभी के लिए प्रेरणा का भावनात्मक स्रोत है और देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का मंत्र है। श्री नड्डा ने कहा कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस राष्ट्रीय गीत ने सभी में ऊर्जा का संचार किया। सदन में इस समय चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने चर्चा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की। श्री मेघवाल ने कहा कि उनके भाषण का सार था कि जो देश का नागरिक नहीं है वो देश में मतदाता भी नहीं हो सकता।
जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून बनाए, हमारे देश के लोगों ने जो नियम बनाए, इस संसद ने नियम बनाए, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है चुनाव आयोग की। जिसको वो कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, तो उसका जवाब हमारे गृहमंत्री जी ने दिया, जवाब सुना ही नहीं उन्होंने। और ठीक ही कहा कि जो इस देश का नागरिक नहीं वो इस देश का मतदाता सूची में सम्मिलित कैसे हो सकता है, यही कल का कोर सब्जेक्ट।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर कड़ा जवाब दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। श्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और ये प्रदूषण कम करता है तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है।
इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है उसके कारण विशेष रूप से कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऊर्जा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और भारत की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है। आज लोकसभा
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि का लगभग 35% या उससे अधिक हिस्सा भारत से आएगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हम ऊर्जा आयात पर प्रतिवर्ष लगभग $150 अरब खर्च कर रहे हैं।
$50 billion ऑन दी इम्पोर्ट ऑफ एनर्जी।
आज लोकसभा में उन्होंने कहा कि देश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल के लिए उपयोग होने वाले कच्चे माल की शुरुआत चीनी और गन्ने से हुई थी, लेकिन अब कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे मक्का की ओर ध्यान दिया जा रहा है। एक अन्य उत्तर में श्री पुरी ने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर पर ₹300 की छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि ये छूट एक वर्ष में 9 बार लागू होगी। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच करने वाली समिति का कार्यकाल 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराना है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर के इम्फाल पहुंच गई हैं। इम्फाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके आगमन पर भारतीय रिजर्व बटालियन की महिला टुकड़ी ने स्वागत किया और गार्ड उन्हें ऑफ ऑनर दिया।
इम्फाल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति इम्फाल मापाल कांगजुबुंग पोलो ग्राउंड में एक पोलो मैच देखने के लिए जाएंगी, जिसके बाद इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में एक सिविक रिसेप्शन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में वहां विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शाम के समय वहां राजभवन इम्फाल में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोक्सोम।
नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्वर्स को आज तलब किया है। व्यापक रूप से उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण श्री एल्वर्स को महानिदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले नागर विमानन मंत्री राम मोहन ने इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्थिरता संबंधी उपायों पर समीक्षा की। इस बीच महानिदेशालय ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया। इसका उद्देश्य उड़ान में देरी होने और इसके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करना है। विदेश मंत्रालय गोवा के नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है। गोवा अग्नि दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। मंत्रालय मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जांच कर रहा है। नीति आयोग एक प्रमुख दैनिक उपभोग सामग्री FMCG कंपनी के साथ राष्ट्रव्यापी स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य देश को चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना है। नीति आयोग ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले 50 उच्च क्षमता के स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें समर्थन दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नाबार्ड ग्रामीण आर्थिक स्थिति और रुझान हाल के सर्वेक्षण में ग्रामीण मांग में मजबूत और व्यापक पुनरुत्थान प्रदर्शित हुआ है। सर्वेक्षण के 8वें दौर में पिछले एक साल में आय में वृद्धि और पारिवारिक कल्याण में सुधार के संकेत मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले 80% ग्रामीण परिवारों ने अधिक खपत किए जाने के बारे में बताया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलू की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित AI समिति का गठन न्याय व्यवस्था में दक्षता, सुलभता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा में 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम उनके उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें कार्तिकेय दीप उत्सव के दौरान तिरुपरमकुंडरम पहाड़ी के पास स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति दी गई थी। न्यायालय के आदेश के बावजूद मदुरई जिला प्रशासन ने 3 दिसंबर को कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए धारा 144 लागू कर दी थी और पुलिस ने कार्यक्रम को रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों ने अभियान जारी रखा जिससे मामूली झड़पें हुई और इसमें कुछ लोग घायल हो गए। सरकार ने कहा है कि देश में जल्द ही डिजिटल एड्रेस प्रणाली लागू करने पर काम कर रही है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि ये एक एकीकृत प्रणाली होगी जिसमें कोई भी अपना पता डाल सकता है और उसे संशोधित कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पता प्रमाणिक होगा और उसे कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। श्री पेम्मासानी ने कहा कि इस प्रणाली में निजता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उपयोगकर्ता के पास इसका पूर्ण नियंत्रण होगा। राज्यसभा ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।
I am pleased to share a moment of immense pride for our nation. Our festival of lights, Diwali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide.
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली को शामिल करना गर्व का क्षण है।
भारत की तीज जो पर्व संस्कृति, ये भारत की पहचान है। जिस प्रकार से दीपावली है तो आज के लिए हजारों साल की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या वापसी से जुड़ी है। यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में, अपनी याददाश्त में शामिल किया है, तो ये भारत के लिए गर्व का विषय है।
इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दीपावली की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने के उपलक्ष्य में केन्या के ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर में आयोजित समारोह में भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की आज अंतिम तिथि है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की घोषणा की थी। घोषणा के समय मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि SIR के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। घोषणा के समय गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 4 तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर आज तक कर दिया था। लेकिन इस बीच केरल के लिए आयोग ने प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूचियां प्रकाशित करेगा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ड्राफ्ट सूची इस महीने की 16 तारीख को जारी होगी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार SIR फेज 2 की शुरुआत के बाद से 50 करोड़ 96 लाख से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं में वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल प्रपत्रों का 99.98% है। कि इनमें से 99.59% प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई श्रम संहिता के अंतर्गत कारखाना मालिक श्रमिकों को 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें केवल 8 घंटे का वेतन देंगे। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि अब कारखाने श्रमिकों के विश्राम समय का निर्धारण भी वो खुद करेंगे। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दोनों दावे झूठे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस पत्र का खंडन किया है, जिसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के राफेल युद्धक विमान के मामले पर टिप्पणी करने के बारे में कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये पत्र गलत है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिक इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। कटक में हुए पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर बाद 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 359 अंक बढ़कर 84,750 पर और निफ्टी 127 अंक की बढ़त के साथ 25,885 पर था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने वाला मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बाद देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर मणिपुर में इम्फाल पहुंची, वे वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कई उड़ानें रद्द होने और देरी के मद्देनजर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को तलब किया। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम चंडीगढ़ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।